ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज के इस मायापुर यात्रा के उपलक्ष में जो मीटिंग है, इस सब में आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग रविवार के इस दिन यहाँ पर आए। तो संक्षेप में हम यात्रा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आपको पत्रिका दी गई है, इसमें काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है और इसी के उपलक्ष्य में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि हम मुंबई में रहते हैं, कुछ लोग बाहर गांव से भी आएंगे, तो ये हमारा जो जीवन है शहर का, वो अधिकतर रजोगुण में चलता है और भक्त लोग उसको भगवान के नाम का जप लेकर सत्व गुण में और दिव्य गुण मिलाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन प्रभाव तो रजोगुण का होता है और अधिकतर तमोगुण का भी होता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में ये बताया गया है कि साल में कम से कम एक बार, अगर अधिक बार तो और अच्छी बात है अगर समय होता है, लेकिन कम से कम एक बार एक साल में अपनी गृहस्थी का जो आराम है, जो सुख सुविधाएँ हमारे घर में हमने बना के रखी है, उस सबको छोड़कर हमको भगवान के धाम में जाना चाहिए और वहाँ पर सादगी का जीवन जीते हुए भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करने के लिए समय बिताना चाहिए। भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए वहाँ जाना चाहिए और भगवान का नाम जप करते हुए, उनकी कथा सुनते हुए, जहाँ पर उन्होंने लीलाएं संपन्न की है, उन स्थानों का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए कुछ समय बिताना चाहिए। और ज़रूर हम हमारे घर की सुविधाएं छोड़कर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूर कुछ असुविधाएं होंगी। कोई नया कमरा होगा, कोई बाथरूम नया होगा और रास्ते नए होंगे, वातावरण भी नया होगा, टेम्परेचर भी अलग होगा, इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी असुविधाएं वहाँ पर होंगी, लेकिन क्योंकि हम भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए वहाँ जा रहे हैं और जाएंगे, इसलिए सारी असुविधाएँ हमें इच्छा से स्वीकार करनी चाहिए। ये यात्रा और पिकनिक में अंतर है। यात्रा जो होती है वो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए होती है और जो पिकनिक होती है वो हमारे इंद्रिय भोग के लिए होती है, अपने स्वयं के भौतिक इच्छाओं के तृप्ति के लिए होती है, उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। लेकिन जब हमारे सफ़र यानी कि जो यात्रा हम कर रहे हैं उसके केंद्र स्थान में भगवान रहेंगे तो वो यात्रा में रूपांतर हो जाता है उसका, और उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसमें इंद्रियों की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक बात को निश्चय करेंगे कि हम यात्रा में जाएंगे, पिकनिक नहीं जाएंगे। हाँ, और जो पिकनिक में लाभ होते हैं वो सारे लाभ यात्रा में भी सम्मिलित होते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अच्छा भोजन की पिकनिक में व्यवस्था होती है, हमारी यात्रा में भी अच्छे भोजन की व्यवस्था हमने की है, सभी मंदिरों में महाप्रसाद की व्यवस्था की है, और साइट सीइंग होता है पिकनिक में, हम भी साइट सीइंग करेंगे, भगवान की साइट सीइंग करेंगे, जहाँ भगवान ने लीला की है वो साइट दर्शन करेंगे। नदी किनारे जाते हैं पानी में खेलने के लिए तो हम भी नदी किनारे यात्रा करेंगे, गंगा जी किनारे, इस तरह के। और आपको चेंज होना चाहिए, इसलिए पिकनिक जाते ना, बॉम्बे में बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान हो गया, अभी थोड़ा घूम के आना चाहिए नई जगह पर जाके, तो वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग कलकत्ता, कलकत्ता से आगे मायापुर जाएंगे जहाँ पर रमणीय स्थान है, नदी किनारा है, हरियाली है, बहुत लंबे लंबे खेत हैं, शुद्ध हवा है, हाँ बहुत भव्य मंदिर है, सुंदर दर्शन है, तो भी आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये सब करते हुए, सब सुखों का आनंद का अनुभव करते हुए केंद्र स्थान में भगवान को रखना है, अपने को रखना नहीं है, ये भी इसका रहस्य है। जब तक हमारे सफर के केंद्र स्थान में भगवान रहेंगे तब तक वो यात्रा रहेगी, जब केंद्र स्थान में हम आ जाएंगे तो वो पिकनिक हो जाएगी, तो हमको ऐसा नहीं करना है, नंबर वन। नंबर टू, हम कार्तिक के पवित्र महीने में यात्रा करने वाले। अब ये कार्तिक महीना जो है ये कल से आरंभ हो रहा है, हाँ कल शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन है, शरद पूर्णिमा के पवित्र दिन से कार्तिक पूर्णिमा के मतलब अगले महीने की पूर्णिमा तक एक महीने का चौथा मास है, तो चतुर्मास का आखिरी मास है। इस मास को दामोदर मास कहते हैं, ये कृष्ण भगवान के बालपन का जो नाम है दामोदर, दामोदर यानी जिनका उदर दाम से बांध दिया था दोरी से, उनका नाम दामोदर है। और चूंकि ये दामोदर का मास है, राधा रानी को ये बहुत प्रिय है, उनको ऊर्जेश्वरी कहा गया है, क्योंकि वो राधा रानी इस महीने पर बहुत प्रेम करती है। और इस महीने में जो भी कोई आध्यात्मिक कार्य करता है उसको राधा रानी भर भर के आध्यात्मिक फल देती है, अपनी कृपा देती है, अपनी दया देती है। उनकी दया का मतलब क्या है, भगवान के चरणों में प्रेम और भगवान के चरणों की भक्ति, ये अनंत कृपा वो इस महीने में करती है। इसलिए कार्तिक महीना, इस महीने में वैष्णव जन जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो सब अपना घर छोड़ के भगवान के धाम में चले जाते हैं, वहाँ निवास करते हैं, भगवान के नाम का जितना रोज जप करते हैं उससे कई अधिक जप करते हैं, व्रत रखते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान को दीपक अर्पण करते हैं, वो सबका इसमें वर्णन दिया गया है। तो संक्षेप में कहा जाए, कार्तिक महीना बहुत पवित्र महीना है जो कल से आरंभ हो रहा है। कल के दिन भगवान ने रास रचाया था, इसी महीने में भगवान को बांधा गया था, इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन की पूजा की थी, इसी महीने में घनघोर वर्षा हुई थी और सात रात तक भगवान ने गोवर्धन को उठा के रखा था। बहुत सारी लीलाएं हुई इसके अंदर, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। इसी महीने में भगवान ने 5 साल की उम्र में बड़ी गायों का भार अपने जिम्मे लिया था गोपाष्टमी के दिन। ऐसे भगवान के लीलाओं के बहुत गिने चुने बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं जो है वो इस महीने में हुई है। इसलिए महीना बहुत राधा रानी को प्रिय है। और हम लोग कार्तिक में व्रत रखते हैं जो आप लोगों को भी रखना चाहिए यात्रा का पूरा लाभ उठाने के लिए। और व्रत का मतलब यह है स्वेच्छा से कुछ नियम हम स्वीकार करते हैं, इसमें स्वेच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फोर्स नहीं है। स्वेच्छा से हम लोग कुछ नियम अपनाएंगे, उदाहरण क्या है, हम भगवान के नाम का जप अगर 16 माला करते हैं तो 2 माला इस महीने में हर रोज एक्स्ट्रा करेंगे। हाँ, ये एक सिंपल व्रत हो गया। कोई 4 कर सकते हैं, कोई 8 भी कर सकते हैं। जैसे यात्रा में तो हम फुल टाइम, कोई बिजनेस करने वाला नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, फुल टाइम केवल भगवान के विषय में हम मग्न रहेंगे तो हमारे साथ में 24 घंटा उपलब्ध है, तो हमारे पास समय भी है, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं, तो समय ही समय है। तो हम 2 से 4, 6, 8, 10 माला एक्स्ट्रा करने का नियम ले सकते हैं, या तो हम अपने साथ में भगवद गीता लेके जाकर ये प्रण करेंगे कि हम रोज भगवद गीता का 2 श्लोक वहाँ पर पढ़ेंगे, वो भी मुमकिन है। रोज भगवान को दीप दान करेंगे, दीपक अर्पण करेंगे, ये भी मुमकिन है। या हम कृष्ण की किताब लेकर जाएंगे और रोज एक कहानी पढ़ेंगे यात्रा में रहते हुए, सोने के पहले या दिन में बीच में एक कथा पढ़ेंगे, ये भी प्रण कर सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे बहुत सारे प्रण हैं जिसको व्रत कहते हैं, तो ये व्रत कार्तिक महीने में स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो आप कार्तिक महीने के अलावा जब कुछ ये करेंगे तब उसका अगर एक परिणाम होता होगा तो कार्तिक महीने में वही काम करने से सैकड़ों गुना उसका परिणाम प्राप्त होता है। यानी कि एक तरह से लॉटरी है ये, हाँ स्पिरिचुअल लॉटरी, आध्यात्मिक लॉटरी कह सकते हैं। वही काम बाकी समय करने से जितना लाभ होता है उससे सैकड़ों गुना अधिक लाभ कार्तिक महीने में राधा रानी स्वयं देती है अपने भक्तों को। तो भगवान का एक ग्रेट ग्रैंड सेल है, भगवान सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनंत लाभ देते हैं छोटे छोटे कार्य करने पर। इसलिए आप सबको विनती है, मैं यहाँ से अभी किसी को हाथ ऊपर करके पूछूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई अभी भी जप नहीं करता होगा नित्य नियम से तो उसको कल से जप करना आरंभ करना है। और हमारी यात्रा का नियम है कि हमारी यात्रा में लोग कम से कम 4 माला जप करते हैं, और करना चाहिए, नहीं तो हमारी यात्रा में आके कुछ फायदा नहीं है, आपको कुछ समझेगा नहीं क्या चल रहा है। हाँ, इसलिए आपको हम विनती करेंगे कि अगर आप जप नहीं करते होंगे तो कल से कम कार्तिक महीने के शुभारंभ के दिन भगवान के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना आरंभ कर दीजिए। और यात्रा में एक और नियम बनाइए कि हम यात्रा में इतनी माला करेंगे, तो उसका भी आपको लाभ होगा। और यात्रा हम तो 4-5 दिन करेंगे, वहाँ पर तो दीपदान होगा ही, लेकिन कल से आपको आपके घर पे भगवान कृष्ण के कम चित्रपट को क्यों ना हो दीपदान करना है। दीपदान का मतलब है घी जो होता है, सबसे बढ़िया घी गाय का होता है, गाय के घी में डुबाया हुआ जो बाती है उसको जलाकर भगवान को प्रेम के साथ में दीपक अर्पण करना, इसको दीपदान की विधि कहते हैं। एक दीपदान करने से करोड़ों वर्ष के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों वर्ष। हाँ, उसकी गिनती मैंने दी, आप पढ़िए उसको, उसको गुणित करके देखिए कितने करोड़ साल होते हैं। एक दीपक के सामने कोई भी ऐसा जघन्य पाप टिक नहीं सकता है, इतनी शक्ति है उस दीपक के सामने। उस दीपक के प्रकाश में, जो दीपक आप भगवान को अर्पण करने वाले हो उसी के प्रकाश में उजाला जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसे रास्ते से हम भगवान के धाम जाएंगे जब ये भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसी शक्ति है इस दीपक में। और काम कितना सा है, बहुत छोटा सा, रेडीमेड आपको लेके जाना है यहाँ से। हमने सबको विनती किया है कि आप एक स्टील का दीपक निरंजन और कुछ 25 बातियाँ कॉटन की, यहीं से घी में सोख करके प्लास्टिक के जिपलॉक में बंद करके, एक लाइटर अग्नि वाला, ये 3 चीज़ें जिपलॉक में डालकर आपको यहीं से लेके जाना है। जो लोग भूल जाएंगे उनके लिए हम लोग रेडीमेड सेट वहाँ पर तैयार रखेंगे, जो भूल जाएंगे तो उनको वहाँ पर दे देंगे। लेकिन सब लोगों को अपने साथ में ये दीपक रखना है। और शाम को तो राधा माधव जी के मंदिर में, मायापुर के इस्कॉन के मंदिर में आपको फ्री में दीपक मिलेगा, रेडीमेड करे जला के आपको अर्पण करना है। लेकिन दिन में जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, अनंत मंदिर होंगे जहाँ पर हम जाते रहेंगे, तो हर एक मंदिर में आपको दीपक दान करने का बहुत सुनहरा मौका इसमें प्राप्त होगा। इसलिए दीप दान करने को आप चुकना नहीं। मेरी ये तमन्ना है, आशा है कि आप सब लोगों को कार्तिक महीने का जो समय निकाल कर आप खर्च करके, दिन निकाल कर आप धाम में जा रहे हैं, उसका पूरे पूर्व हाँ लाभ आपको मिलना चाहिए, ऐसी हमारी प्रामाणिक इच्छा है। दूसरी बात हुई कार्तिक की, इस कार्तिक में हम मायापुर धाम जा रहे हैं। कितने लोगों को पता है मायापुर क्या है? बहुत कम लोगों को पता है। मायापुर धाम जो है, वैसे भी शास्त्र में लिखा है कि आम जनता को इसका परिचय नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, इसका वर्णन भी इसमें दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण हैं जो भगवान न बनकर भगवान के भक्त का अवतार लेकर कलयुग में आए थे। स्वयं गौलोक का सबसे श्रेष्ठ धन जो है, भगवान के नाम का, भगवान के प्रेम का धन जो है, वो गौलोक से लेकर स्वयं नीचे आए, भगवान का खुद का भक्त बनकर आए और सब लोगों को गौलोक का प्रेम हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने सब जनता को बांटा। उनका जन्म जो है जैसे कृष्ण का मथुरा में हुआ, वैसे गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो मायापुर में हुआ। ये मायापुर स्थान जो है वो कलकत्ता से 4 किलोमीटर अंतर से, 4 घंटे के 120 किलोमीटर के अंतर पर है। इसमें 9 द्वीप हैं, इसलिए उसको नवद्वीप कहा गया है। उसके 9 द्वीप के 8 द्वीप जो है वो गोल है और बीच का जो द्वीप है उसको अंतर्द्वीप कहा गया है। वो अंतर्द्वीप मायापुर धाम है। अंतर्द्वीप में 1486 में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने पात्रे अपात्र ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान। कोई व्यक्ति पात्र है कि नहीं पात्र है, कोई स्थान सही है कि नहीं है, ये कुछ भी ना देखते हुए सभी जीवों को, जो पतित है, जो पतित नहीं है, जो भक्त है, जो भक्त नहीं है, जो शूद्र है, जो चांडाल है, जो पापी है, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने कोई भी मापदंड न देखते हुए हरिनाम का दान किया और भगवान के प्रेम में उनको सबको आनंद में डुबो दिया उन्होंने। तो उन भगवान के धाम में हम जा रहे हैं। अगर श्री वृंदावन धाम माधुर्य धाम है जहाँ पर भगवान ने माधुर्य प्रेम को प्रकाशित किया, तो मायापुर धाम को औदार्य धाम कहा गया है। श्री वृंदावन धाम का जो आनंद है वो कुछ लोगों तक सीमित है, जो भगवान के भक्त हैं, जो गोपी हैं, जो गोप हैं, माता पिता हैं, गाय हैं, बैल है, मोर है, जो ब्रजवासी हैं, उन तक सीमित है वो। लेकिन गौरांग महाप्रभु का जो औदार्य धाम है, औदार्य मतलब उदारता, वो औदार्य धाम इसलिए है कि वो सबके लिए उदारता से ये प्रेम जो है वो बांटने वाला धाम है। इसलिए योग्य अयोग्य ना होते हुए भी सब लोग मायापुर में जाकर कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और मायापुर धाम की और ही महती ऐसी है कि मायापुर धाम में कोई भी अपराध भगवान स्वीकार नहीं करते, सब अपराध वहां पर माफ है। केवल एक अपराध छोड़कर सब अपराध वहां पर माफ है। एक अपराध कौन सा है? वैष्णवों का अपराध। किसी भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, बस वो वहां पर माफ। वो तो दुनिया में कहीं भी माफ नहीं होता है, ना स्वर्ग में होता है, ना वैकुंठ में होता है, ना भौतिक जगत में होता है, ना पृथ्वी में, नरक में, कहीं भी भगवान के भक्तों का अपराध माफ नहीं होता है। अगर वो भक्त वह माफ करेगा आपको जिसका अपराध आपने किया है, तो ही माफी हो सकती है। तो भगवान के भक्तों के अपराध के छोड़कर बाकी सारे अपराध जो भगवान के प्रति होते हैं, जो और किसी प्रति होते हैं, वो सब धाम मायापुर धाम में केवल माफ हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कहा गया, अगर यात्रा शुरू करनी है पहली बार जिंदगी में, तो सबसे पहले मायापुर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाने से धाम में रहने का एक अनुभव प्राप्त होता है, और गलती से भी अपराध हो गया तो माफ़ हो जाता है। तो गौरांग महाप्रभु बहुत दयालु हैं। कृष्ण भगवान इतने दयालु नहीं हैं जितने गौरांग महाप्रभु हैं। है वो कृष्ण ही, लेकिन कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो अति अनंत दयालु बन जाते हैं। तो हम उनके धाम पर जा रहे हैं। ये मायापुर धाम की महिमा है। इसकी विस्तार में महिमा आपको धाम में बताएंगे, लेकिन संक्षेप में आपको पता होना चाहिए कि हम भगवान के चरणों की असीम कृपा बड़ी सहजता से प्राप्त करने के लिए श्री मायापुर जा रहे हैं। धाम जो होता है उसमें तीन प्रकार के धामवासी होते हैं। एक धामवासी ऐसे होते हैं जो भगवान की अनंत कृपा से उनका जन्म ही धाम में होता है। धामवासी माता के गर्भ में उनका जन्म होता है, जन्म से धामवासी हैं। ऐसे कहा गया है कि धामवासी जो जन्म लेते हैं वहाँ पर, वो विशेष जीव होते हैं। भगवान की असीम कृपा प्राप्त किए हुए जीव ही वहाँ पर जन्म ले सकते हैं, और उनका दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं होता है। उसी जन्म के अंत में वो भगवत धाम में पधार जाते हैं। ये एक प्रकार के सर्वश्रेष्ठ धामवासी हैं। दूसरे धामवासी वो हैं जो बाहर के जन्म लेते हैं, बम्बई, अमेरिका, दिल्ली, कहीं और जन्म लेते हैं, लेकिन जीवन में किस समय पर वहाँ पर घर बनाते हैं, वही शिफ्ट हो जाती है। समझो 40 साल काम कर लिया आदमी, फिर अपना घर बना के श्री वृंदावन में, मायापुर में वो शिफ्ट हो जाते हैं। घर बनाकर वहीं पर बसते हैं, वहीं भजन पूजन करते हैं, अपना जीवन बचा हुआ वहीं बिताते हैं। वो भी धामवासी हैं। और तीसरे धामवासी जो हैं वो हमारे जैसे हैं, जो परमानेंट बॉम्बे में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, लेकिन साल में कुछ दिन वहाँ पर जाके रहते हैं, वो भी धामवासी हैं। क्योंकि धामवास का मतलब क्या है, वो एक मिनट का हो, दो दिन का हो, आठ दिन का हो, या दो साल का हो, या परमानेंट लाइफ का हो, धामवास धामवासी है, छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे। तो आप भी पांच दिन के लिए क्यों ना हो धामवासी बनने वाले हो। इसलिए एक दूसरे का आपको यात्रा में बहुत आदर करना चाहिए। किसी भी साथी यात्री का कोई अपराध नहीं करना चाहिए। उसका दिल दुखे, उसको कष्ट हो, उसको पीड़ा हो, उसको वेदना हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जितना तक हो सके उतना साथी यात्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर आपका धामवास सफल होगा। और ये कब होगा? जब अपने आप को केंद्र स्थान में निकालकर आप भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा को प्रधान रखेंगे तो ये मुमकिन है। अगर अपने स्वार्थ को आगे रखेंगे तो आपके हाथ से बार बार अपराध होते रहेंगे। तो धाम में जाकर प्राप्त करने के बदले में आप कर्ज, क्या कहते हैं उसको, ऋणी बनकर वापस आएंगे, डेटर बन के वापस आएंगे, कर्ज बाजारी कहते हैं उसको मराठी में। तो हमको ऐसा नहीं होना है, हमको जाना है धाम में, उसका पूरा लाभ उठाकर लाना है वापस। तो धाम में क्या मूड होना चाहिए, हमको किस मूड से धाम में जाना चाहिए? धाम में केवल एक ही मूड एक्सेप्ट होता है, वो है सेवा का मूड। सेवा के भाव के अलावा कोई भी अन्य भाव धाम में स्वीकृत नहीं होता। बाकी सारे भाव वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। ये हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान की सेवा, जो साथ में यात्री आए हैं उनकी सेवा, जो हमको धाम में दिखाई पड़ेंगे धामवासी या अन्य भक्त दिखाए होंगे जो और यात्रा में से आए होंगे या और कहीं से आए होंगे या वहाँ रहते होंगे, जितने भी धामवासी आपको देखते हैं वो साधारण जीव नहीं हैं। भगवान के विशेष कृपा से ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। हम प्रार्थना करना चाहेंगे आप सबके लिए कि आपने टिकट निकाला हुआ है, रूम बुकिंग किया हुआ है, पैसा भरा हुआ है, सब बैग भर रहे हैं, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी आप वहाँ पहुँचे, ये हमारी आपके लिए प्रार्थना है। क्योंकि आज से पहुँचने में अभी तक 6 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है? 8 दिन बाकी है। हाँ, बीच में कुछ भी हो सकता है ना, बुखार आ सकता है, कुछ इमरजेंसी आ सकती है। तो इसलिए आपको अभी से प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए। ये मत समझना कि धाम में कोई टिकट निकाल के पहुंच सकता है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हम धाम में हवाई जहाज का या ट्रेन का टिकट निकाल के, टैक्सी करके या रूम बुक करके या भोजन की व्यवस्था करके, वहाँ पर इंटरनल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये सबसे गलत भावना है। धाम में केवल भगवान की कृपा से ही हम पहुँच सकते हैं। जब तक किसी भक्त की, संत की और भगवान की परमिशन नहीं होती है, तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। अगर मुझे आपके घर पे आना है, जब तक आप हाँ नहीं करेंगे तब तक मुझे आपके घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सिंपल बात है ना। आपके घर में मैं डोर दरवाजा तोड़ के अंदर घुस सकता हूँ ना। आई कैनॉट डोर क्रैश इन योर हाउस। जब मुझे आना है आप बोलेंगे हाँ आ जाओ, तो आपने दिए हुए समय में मुझे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने शाम को समय दिया है और सुबह 6 बजे पहुंच गया मैं, तो भी नहीं चलेगा, है ना। आपके इच्छा के अनुसार, आपके प्लान के अनुसार, आपकी मति के अनुसार मुझे आपके घर पे आना होगा, तब आपका पूरा आदरातिथ्य मुझे मिलेगा, आपका पूरा प्रेम सम्मान सत्कार, आपकी तरफ से कोई दूध वगैरह जो आप देंगे, मिठाई देंगे, वो तब मिलेगा जब मैं आपके प्लान के अनुसार आऊँगा। उसी तरह से भगवान के धाम में भी जब उनकी कृपा होती है तो ये हम पहुँच पाते हैं। कुछ लोग धाम में शरीर से पहुँचते हैं लेकिन उनका मन को और आत्मा को धाम में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी मन और आत्मा बम्बई का विचार करते रहते हैं। तो ऐसा भी हमको धाम वास नहीं करना है। वहाँ रहकर बम्बई का विचार करना मतलब हम तन से वहाँ पर हैं, आत्मा से बम्बई में हैं। और अगर यहाँ पर रहकर धाम के बारे में सोच रहे हैं तो तन से बम्बई में हैं, आत्मा से धाम में हैं। ये धामवास अच्छा है। हमारा धामवास तब कब सफल होगा? जब वहाँ पर हम ऐसी चेतना में रहेंगे, सेवा भाव की चेतना में रहेंगे, सबको मदद करने की भावना में रहेंगे, अपने आप को पीछे रखेंगे, बाकी सबको आगे रखेंगे, उनको प्राधान्य देंगे, उनको सेवा करने का मौका देंगे। जब बड़े बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, जो कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उनको सहायता करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, प्रसाद के समय पर बाकी लोगों को प्रसाद देने का पहला मौका देंगे, हमको पीछे रखेंगे, कोई सेवा हो तो तुरंत झट से करेंगे, उसको इच्छा से करेंगे, ये भाव से रहेंगे तो धाम आपके आत्मा पर हावी हो जाएगा, आपके आत्मा में सवार होकर आपके साथ में बम्बई लौट के आएगा, और बम्बई में रहकर आपको धाम की याद आएगी तो आपका धाम वास सफल हो गया। आपको धाम में 4-5 दिन रहकर वहाँ की कथा सुनकर दर्शन करते हुए लाभ लेकर ऐसा वास करना है कि धाम का पूरा जो पिक्चर है आपके हृदय में समाकर बम्बई में आपके साथ में आना चाहिए। आपकी चर्चा में, आपके विचार में, आपके स्वप्न में, सब कुछ आपको धाम की याद आनी चाहिए। तो मतलब यहाँ रहकर भी आपका धाम का वास हो रहा है, इस प्रकार का धाम वास होना चाहिए। इसलिए यात्रा को जो है ना, आप लोग बैग भर रहे हैं, उसमें गर्म कपड़े भरेंगे, टूथपेस्ट लगाएंगे उसके अंदर, और कुछ रखेंगे, मोजे रखेंगे, कैप रखेंगे, बहुत सारा लिस्ट दिया है हमने, वो एक तरह का पैकिंग हो गया। लेकिन उससे अधिक पैकिंग होता है हृदय का। हृदय के बैग में क्या क्या भरेंगे आप? सेवा भाव, श्रद्धा, भगवान को केंद्र स्थान में रखेंगे, ये भी एक भाव है पैकिंग का। अपने आप को छोड़कर भगवान को केंद्र स्थान में रखेंगे, सहन करेंगे जो भी असुविधा होगी, एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए कंप्लेंट नहीं करेंगे। अगर आप सच में यात्रा करना चाहते हैं, जो भी कोई भयंकर जघन्य घटना होती है तो कोई बात नहीं, हम लोग सहायता करेंगे, लेकिन छोटी मोटी कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यात्रा में जाके बोलेंगे चाय नहीं मिल रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, हाँ ऐसा हुआ, रास्ता में कितना खराबी है, रास्ता अच्छा क्यों नहीं बना दे गवर्नमेंट, ये सब देखने जाएंगे तो बंबई में भी वही वातावरण है, तो वहां पर भी वही भाव लेके जाएंगे तो फायदा क्या है। संत लोग कहते हैं अपना रजोगुण शहरों में छोड़कर ही केवल सत्वगुण लेकर यात्रा में जाना चाहिए, अपने शहर का जो आदत बनी हुई है वो रजोगुण लेकर वहां पर जाना नहीं चाहिए, तो धाम का सही आस्वाद आपको नहीं मिलेगा। धाम का आस्वाद ऐसे हम लोग वो है ना रेडियो वो चलाते हैं ना, पुराने जमाने में हम लोग वो सिलोन लगाते थे, सिलोन बुधवार के दिन सुनते थे कुछ गाने उसके ऊपर, तो सिलोन सुनना है तो हमारा कांटा जो है वो सिलोन के ऊपर आना चाहिए, दो बैंड बदलने चाहिए, जब सही जगह पर दो बैंड बदलने के बाद में कांटा आएगा तभी जाकर सिलोन का ध्वनि सुनाई पड़ेगा, है ना। और फिर दिल करा कि बॉम्बे भी सुनना है हमको मराठी, तो बैंड चेंज करके फिर बॉम्बे भी की जगह जाना पड़ेगा और वहां पर कांटा रखेगा लाल कांटा, तो आपको बॉम्बे भी का आवाज सुनाई पड़ेगा, है ना। तो जब तक आपका ट्यूनिंग उस सेंटर से नहीं होता है तब तक उस सेंटर की आवाज आपको नहीं आएगी। उसी तरह से आपकी आत्मा की ट्यूनिंग जब तक धाम से नहीं होती है तब तक धाम की लहरें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। इसलिए हम सबको, हमको आज यहां क्यों बुलाया है, आपका जो रेडियो है उसका ट्यूनिंग करने के लिए बुलाया है सेंटर कौन सा है, नंबर कौन सा है, फाइन ट्यूनिंग कौन सा है बताने के लिए आपको बुलाया है। एक बार आपका सही ट्यूनिंग हो गया तो आपको धाम से निकली हुई सारी लहरें आपको प्रभावित करेंगी और पूरा लाभ मिलेगा आपको उसका। वो होता है ना भिंग, होता है ना भिंग लेंस, लेंस तो सही पकड़ेंगे ना एक जगह पर ऐसे आगे पीछे करके, तो एक जगह पर सारे किरण एकत्र हो जाएंगे और माचिस की काड़ी जो तुरंत जल जाएगी, होती है ना ऐसे, आपको खाली उसको एडजस्ट करना पड़ता है आगे पीछे करके, एक जगह पर लाना होता है, उस जगह पर लेके जाएंगे तुरंत जलेगी वो। उस तरह से हमारे सारे लहरों को हमको एकत्र करना है और भगवान के द्वारा जो कृपा की लहरें वहां अनंत मात्रा में उपलब्ध हैं वो सब स्वीकार करना है। यात्रा का सही मूड है, यात्रा में स्वयं के लिए कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, यात्रा में केवल भगवान का सहारा, भगवान का आश्रय ग्रहण करने के लिए जाना चाहिए, बस। द ओनली पर्पज आई एम गोइंग देयर इज टू एक्सेप्ट द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान का सहारा यहां पर पूरी तरह से नहीं मिल रहा है वो वहां पर लेने के लिए हम जा रहे हैं, भगवान के नाम का जप करके, भगवान के बारे में भक्ति के नियम पालन करके, भक्तों का संग करके, भक्तों की द्वारा भगवान की कथा सुन के, भगवान के स्थानों का दर्शन करके, उसमें ही आत्मा को लीन करके हम भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं। एक सुंदर वाक्य संत बताते हैं, संत लोग वो कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम बहुत दीन हैं, बहुत गरीब हैं, हमारे पास भौतिक दृष्टि से बहुत सारा पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हम सब लोग कलयुग के जीव हैं और हमारे पास आध्यात्मिक संपत्ति बहुत कम है। एक तरह से संत लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से भिखारी हैं और हम धाम में भगवान की कृपा की भिक्षा मांगने को जाते हैं, ये भाव होना चाहिए। ऐसा लगेगा अरे हमको भिखारी बना दे तुरंत एक लेक्चर के अंदर लेकिन ऐसा नहीं है अगर इसका भाव आप समझते हो, क्योंकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा के अलावा कोई हमारे लिए आसरा नहीं है, कोई आशा नहीं है हमारे लिए, कोई उम्मीद नहीं है। महाप्रभु जी की कृपा होगी तो हमारे पतित अवस्था में भी बड़ी सहजता से हमको कृपा प्राप्त होगी और इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए हम धाम में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को विनती करता हूं दोबारा एक बार कि कल से ही आप माला जप करना शुरू कीजिए, जो पहले से कर रहे हैं जितनी भी माला कर रहे हैं उससे अधिक माला करने का कल से प्रण कीजिए, जो 16 माला कर रहे हैं उससे भी अधिक करने का प्रण कीजिए और अपने यात्रा को बड़ी अच्छी तरह सफल कीजिए। धाम में जब जाते हैं तो धाम की हवा, धाम का पानी, धाम में मिलने वाला प्रसाद भोजन के लिए, ये सब दिव्य रस का सार है ऐसे कहा गया है। इसलिए धाम में जो प्रसाद मिलेगा आपको वो भगवान की बड़ी अनंत कृपा होगी हमारे ऊपर, क्योंकि प्रसाद में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए आप सबको विनती है जो भी प्रसाद आपको धाम में प्राप्त होगा वो एक कण को भी आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक कण को भी आप वेस्ट करेंगे तो भगवान को ही आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि भगवान में उसमें कोई अंतर नहीं, अभिन्न है। इसलिए लंच हो या ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो या और कुछ हो, कोई वस्तु को आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको पर्याप्त मात्रा में प्रसाद उपलब्ध होगा, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा लेकर उसको बाद में खा नहीं पाना और छोड़ देना और उसको फेंक देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। वो अपराध बॉम्बे में भी है और वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आप छोड़ेंगे तो एक अपराध होगा, वहाँ पर वही करेंगे तो 100 गुना अधिक आपको अपराध भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको विनती करूँगा, जहाँ पर भी प्रसाद का इंतजाम किया है, अधिकतर महाप्रसाद का इंतजाम किया हमने। जहाँ जहाँ मंदिर में हम जाएंगे, हमारी यात्रा की एक विशेषता है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं के प्रसाद का इंतजाम करते हैं, वहीं के मंदिरों का महाप्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो आप लोगों को विनती है, बच्चे हों आपके साथ में या और कोई बूढ़े व्यक्ति हो, किसी प्रकार से आपको अगर नहीं जमता हो तो आप उतना ही लीजिए जितना आपको आप ले सकते हो, बट वेस्ट मत कीजिए। ये प्रसाद के बारे में नियम है। यात्रा का मूड बनाने के लिए हमारा जो पहराव है वो भी यात्रा के अनुकूल होना चाहिए। हाँ, अगर हम यात्रा में हाफ पैंट टी शर्ट पहन के गॉगल पहन के घूमेंगे तो आपका यात्रा का मूड नहीं बनेगा, किसी और मूड बनेगा आपका। इसलिए हमारी यात्रा में आप सबको विनती है कि कोई भी वेस्टर्न ड्रेस आप नहीं पहनेंगे, जीन्स हाफ पैंट बरमूडा टी शर्ट हाँ इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनेंगे। आपके लिए शर्ट पैंट आप पहन सकते हो, लहंगा पैजामा पहन सकते हो, इच्छा हो धोती कुर्ता पहन सकते हो, ये आप पहन सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो वेस्टर्न फैशनेबल ड्रेस होते हैं वो आपको नहीं पहनना है। माताओं के लिए विनती है कि आप साड़ी पहन सकते हो या पंजाबी ड्रेस पहन सकते हो, लेकिन स्लीवलेस और टाइट ड्रेसेस और टी शर्ट्स और जीन्स ये सब आपको नहीं पहनना है। और ख़ास करके माताओं के लिए विनती है कि खुले बाल छोड़कर हमारी यात्रा में किसी को हम प्रवेश देते नहीं हैं। हाँ, आपको हम यहाँ पर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर हमको दिखाई पड़ता है तो हम आपको नम्रता से आके याद करेंगे, माता जी प्रभु जी आपको ऐसे नहीं रहना है, हमारी यात्रा में ये अलाउड नहीं है। बच्चों के लिए खास करके आपको याद रखना है कि बच्चों के कपड़ों पर बहुत सारे होते हैं स्लोगन्स, कोई फिल्म स्टार का नाम होता है, कोई कुछ और कुछ वाक्य होता है उसके ऊपर, कोई और कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है, उस प्रकार के स्लोगन वाले कपड़े बच्चों को नहीं पहना के लाना है आपको। बच्चों को भी आध्यात्मिक ट्रेनिंग देना हमारा कर्तव्य है। बच्चों को भी बताना कि धाम क्या है, धाम में कैसे रहना है, कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे वर्ताव करना है, ये बच्चों को छोटे उम्र से आपको सिखाना है। अगर हम अपने बच्चों को धाम में भी ऐसे वेस्टर्न कपड़े पहनकर लेके जाएंगे तो उनको धाम की महिमा कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए ऐसे कहा गया ना कि इफ़ यू गो टू रोम लिव एज रोमन्स, अगर रोम में जाओगे तो रोम के लोगों की तरह रहना चाहिए, धाम में जाएंगे तो भगवान की भक्ति के अनुकूल वस्त्र और हमारा जो पहराव, हमारे बाल, हमारा बर्ताव धाम के अनुकूल होना चाहिए, तभी धाम के लहरों से हमारा मैचिंग होगा और पूरा लाभ आपको मिलेगा, नहीं तो वहां पर जाके भी सूखे सूखे लौट के आएंगे हम। धाम में जो भी हमने योजना बनाई है, बहुत सुंदर योजना बनाई है, हमारी जो टीम है यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर मनोज चव्हाण हमारे खड़े हैं, ये गांधीविले के ठाकुर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, और संदीप कैमल सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु हमारे हॉस्पिटल के कस्टमर डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, और हमारे गोपीकांत प्रभु स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, और रवि शिंदे प्रभु हमारे डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र हैं। इन्होंने मिलकर आप लोगों की रहने की, खाने की, यात्रा की, सफ़र की, बस की, ट्रेन की जो भी व्यवस्था है वो बड़ी मेहनत से की है, और बहुत हमने फरवरी से ये काम शुरू किया है, तब जाकर हमको रूम मिले, नहीं तो रूम मिलने का तो एक समय ऐसा आया था कि यात्रा कैंसिल करनी पड़ेगी, ऐसा समय आया था क्योंकि रूम ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन फरवरी से लगातार उनका पीछा करके आखिर में हमारे हाथ में कुछ रूम्स आए, और वहाँ पर भी बहुत सारा फॉलोअप करना पड़ा, कभी नंबर बदली हो गए, कुछ बताया गया था कुछ कम नंबर मिले, फिर और नंबर करने पड़े, यहाँ वहाँ ऐसे करके उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था की है प्रसाद की, और जहाँ जहाँ जितना जितना सोच सकते हैं वो सोच सोच कर प्लानिंग बनाया है, और 5 दिन में कहाँ कहाँ जाना है उसका पूरा टाइम टेबल भी बनाया है। लेकिन वो सब हमारा प्रपोजल है भगवान के लिए। फिर वही उदाहरण, अगर मैं आपके घर में जाता हूँ और आपके घर में समझो 4 कमरे हैं, तो कौन से कमरे में मुझे बिठाना है ये आपके हाथ में होता है ना। सर आप यहाँ बैठिए, भोजन के लिए आपको यहाँ बैठना है, आप तय करेंगे, सर आप इस बाथरूम में जाइए। लेकिन आपको आपको इच्छा है कि 2 कमरे में इनको लेके जाना नहीं है, तो आप 2 कमरे बंद रखेंगे और मुझे वहाँ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मालिक हैं ना घर के, मैं आपका मेहमान हूँ। उसी प्रकार से हम भगवान के घर जा रहे हैं, तो भगवान के घर में अपने घर की कौन सी वस्तु आपको दिखानी है इसका फाइनल जो अथॉरिटी भगवान के पास है। तो हमने जो प्लान बनाया है उनको एक प्रपोजल दिया है, भगवान आपके घर के ये चीज़ें हम देखना चाहते हैं, लेकिन सैंक्शन करेंगे वो, अथॉरिटी होगी उनके पास। इसलिए प्लान जो बनाया है उसको समय और स्थल और टाइमिंग को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए कभी कभी बदलना पड़ेगा। कभी धाम में जाके वर्षा होती है बहुत सारी, हमारा प्लानिंग तो नहीं है कि वर्षा होगी, ऐसा अंदाज नहीं है, लेकिन हो जाती है। कभी बस फेल हो जाती है या और कुछ हो जाता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, नाव चल नहीं सकती है, बहुत सारी घटनाएं धाम में होती रहती है। तो समय के अनुसार हम अपना प्लानिंग आपके सबके हित को देखते हुए चेंज करेंगे, लेकिन उम्मीद यह है कि कुछ चेंज नहीं करना पड़े। लेकिन आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए कि हम कलेक्टिव हित, सबका हित देखते हुए निर्णय लेंगे, और वो आपको अनाउंस करते रहेंगे बार बार। तो आपको सबको विनती है कि जो सूचना हम देते रहेंगे हमेशा अनाउंसमेंट के अंदर, वो सबको ध्यान से सुनना है। वो अगर ये पत्रिका आप पूरी पढ़ेंगे और इसके बाद जो मनोज चव्हाण अनाउंस करेंगे उसको बराबर सुनेंगे और रोज की अनाउंसमेंट ध्यान से सुनेंगे, तो मेरे विचार से आपको कोई प्रश्न मन में नहीं आएगा, सब प्रश्नों के उत्तर उसमें दिए जाएंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो प्रश्न के आपके मन में आते रहेंगे लेकिन अगर ध्यान सुनेंगे तो आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आएंगे। इसे हमने व्यवस्था बना के रखी। एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि धाम ये भगवान का शरीर है, धाम इज द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान में और धाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, नाम रूप लीला और धाम ये भगवान से अभिन्न है। भगवान की लीलाएं भी भगवान से अभिन्न है, भगवान के रहने की जगह भी उनसे अभिन्न है। इसलिए धाम में हमारी तरफ से कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो भी कचरा बनता है वो हमको थैली में डाल के जो नियुक्त जगह है उसी में डालना है। कहीं पर भी आपको अपनी तरफ से, जैसे बॉम्बे में होते ना, ट्रेन से कुछ फेंक दिया, कुछ बस से फेंक दिया, कुछ टैक्सी से फेंक दिया कागज, ये बॉम्बे में चलता है। अमेरिका में $1,000 का दंड होता है, मुझे अच्छा लगता है बहुत ही। इसलिए उस रास्ते पे कोई कचरा नहीं होता है, क्योंकि हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से वो चेकअप करते रहते हैं कौन कचरा फेंक रहा है, उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ते हैं। $1,000 मतलब ₹55,000 लेते हैं दंड उसका, रास्ते पर कचरा फेंकने का। दुर्दैव से हमारे भारत में ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हमारी यात्रा में जरूर नियम रहेगा आपको विनती हमारी तरफ से, चलते हुए बस में या खड़े हो गए हुए बस में, या हम चल रहे हैं पैदल, या किसी भी प्रकार के वाहन में रहेंगे, बोट में रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, चल रहे हैं, हमारी तरफ से कोई भी कचरा जमीन पर वहाँ गिरना नहीं चाहिए। इकट्ठा करके रखिए, जहाँ कचरे का डब्बा रहेगा उसमें डाल दीजिए। अगर बस में आप भोजन कर रहे हैं, आपको मिलेगा बस में ब्रेकफास्ट लंच मिलता रहेगा, तो बस में हमारे स्वयं सवेक आएंगे थैला लेकर, आपको सारा सामान बस में डाल, वो कचरे के थैली में डालना है, वो हमारे वॉलंटियर्स इकट्ठा करेंगे और अच्छी जगह पर उसका डिस्पोज करेंगे। ये सबको मंजूर है, ये सब लोग उसको फॉलो करेंगे। बच्चों को भी आपको फॉलो करवाना है, किसी भी तरह से आपके तरफ से कोई गंदगी ऐसे आदत की बुराई आदत होने की वजह से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ये होगा कचरे के बारे में, पानी के बारे में, कोई बस से खड़ी बस में हाथ धो रहा है खाना खा के, कोई खड़ी बस से पिचकारी दे रहा है बाहर, कोई बाहर कुछ पानी फेंक रहा है, ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ पर नहीं होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण एक बात है प्लास्टिक वाली, कलयुग को प्राप्त हो गया हुआ ये सबसे बड़ा शाप है प्लास्टिक। जब से प्लास्टिक जीवन में आया, जीवन का दर्जा बहुत घटिया और घटिया होते गया। और बचपन में हमारे में हमको ये पता भी नहीं था कि पानी भी खरीदा जाता है, लेकिन हमारे जीवन में हमने देखा है कि बचपन में ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम भी पानी खरीदने लगे, क्योंकि शुद्ध पानी मिलना भी हमारे बचपन में, हम लोग ट्रेन में जाते हुए बिंदास में स्टेशन में उतरते, वहाँ के नल का पानी पीते थे और कुछ नहीं होता था। आज वो पीते ही टाइफाइड होगा आपको और कुछ बीमारी लग जाएगी, इसलिए हम पानी खरीदते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमको धाम में जाकर कोई रेडीमेड प्लास्टिक में बनी हुई पानी की बोतल नहीं खरीदना है। आपको वाटर बॉटल यहाँ से लेके जाना है, और हमारे पास शुद्ध जल की, मिनरल वाटर की व्यवस्था हमने हर जगह पर की है, रहने की जगह पर, भोजन की जगह पर, वहाँ पर हर रोज़ आपको अपनी बोतल भर के रहना है, ख़त्म होगी दोबारा भरना है, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको लंच दिया जाएगा वहाँ वहाँ पानी की व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। आपको नॉन डिस्पोजिबल पानी की बोतल लेके जानी है, 2 लीटर की, वो बहुत अच्छा है, बहुत समय आएगी आपको, और उसको भर के लेना है। कोई भी यात्रा में किधर से भी दुकान से पानी की बोतल नहीं खरीदेगा। हमने गणित करके रखा है कि अगर सब लोगों ने मिलकर बाहर का पानी बोतल लेकर पानी पीने का तय किया, तो कुछ 1800 बोटल्स केवल हमारी यात्रा की तरफ से धाम में डंप हो जाएंगी और पर्यावरण में बाधा आएगी हमारी तरफ से। तो किसी प्रकार से हमको धाम में कोई भी गंदगी लाना नहीं है हमारी तरफ से। वैसे हमको स्नान करना है और टॉयलेट को भी यूज़ करना है, तो वो गंदगी तो हमारी तरफ से अनिवार्य रूप से हो रही है, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर हमको हमारी तरफ से धाम में गंदगी नहीं पैदा करना है। हो सके तो धाम में जहाँ दर्शन करने जाएंगे वहाँ की गंदगी को हम साफ करेंगे, हो सके तो। लेकिन हमारी तरफ से वहाँ पर जहाँ कथा में बैठे हैं, जहाँ पर घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वहाँ से कुछ कपड़ा फेंक दिया, कुछ कागज़ फेंक दिया, कुछ बिस्किट खा के उसका टुकड़ा फेंक दिया, ये हमको नहीं करना है। और विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, जब हम कथा करके कहीं से उठेंगे तो गलती से भी हमारे हाथ से कुछ गिर गया होगा तो हम उसको उठाएंगे, थैले में डालेंगे और निहित स्थान पर उसको डिस्पोज करेंगे। ये सबको निश्चय करके जाना है यहाँ से। जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे मन की, तब तक ये नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया है कि आपको ये सब कुछ ध्यान रखते हुए जो भी बुरी आदतें हमारी यहाँ पर होंगी वो सबको कैंसिल करके वहाँ पर अच्छी आदतों को लगाकर रहना है। मैंने कई साल तक ये अपने जीवन में पहले उतारा, तो आज मेरी ऐसी आदत हो गई है कि बॉम्बे में भी हो, कलकत्ता में, दिल्ली में, कहीं भी हो, मेरे हाथ से कोई कचरा बाहर गिरता ही नहीं है, वो सीधा जेब में जाता है और घर जाकर निकाल कर मैं अपने घर में डालता हूँ। जो धाम में आदत डालेंगे वो यहाँ डालेंगे तो भी और भी अच्छा है, फिर धाम में वो आदत बुरी प्रकट नहीं होगी। इसलिए अपने खून में ही, रगों रगों में उस आदत को डालना है कि हमारी तरफ से कोई गंदगी पैदा ही नहीं होनी चाहिए किधर। इस बिल्डिंग को इतना साफ रखा है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, इसमें दो काम है, एक है जो बना है कचरा उसको साफ करना और एक है कचरा ही न बनने देना। कौन सा उपाय अच्छा है? कचरा ही न बनने देना सबसे बेस्ट उपाय है। अगर बन जाता है तो साफ करना है, दूसरा उपाय है। लेकिन अगर कचरा न बनाने की आदत डालेंगे तो काम भी कम हो जाएगा और जगह भी साफ सुथरी रहेगी और सत्वगुण जो है वो बना रहेगा। ठीक है, एक सबको विनती है छोटी सी कि हमारी यात्रा में जो भी बुजुर्ग होंगे, बड़ी उम्र वाले होंगे, जो बच्चे होंगे और जो कोई बीमार होंगे, ये तीन विशेष लोगों के आपको विशेष ध्यान रखना है। स्त्रियों का भी ध्यान रखना है, जब समझो अंधेरा हो जाता है कभी लौटने के समय, सभी लोग साथ में रहना है और सुरक्षितता को प्राप्त करते हुए चलना है। क्योंकि धाम तो धाम है, दिव्य है, भगवान का धाम है, लेकिन कलयुग है ना, धाम के अंदर भी चोर उचक्के रहते हैं, डकैत रहते हैं, कुछ कुछ रहते हैं, गलत घटनाएं धाम में भी हो जाती है। ऐसा नहीं होता तो धाम में पुलिस चौकी क्यों होती है ना। अगर धाम में सब पवित्र कार्य होते रहते तो वहाँ पर पुलिस चौकी, पुलिस थाना, जेल कोई ज़रूरत नहीं उसकी। लेकिन फिर भी है, उधर न्यायालय भी है, कोर्ट भी है, कचहरी भी है, सब कुछ होता है वहाँ पर। इसका मतलब धाम में भी गलत कार्य होते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम अपने जानकार देश छोड़कर कहीं और जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा हमको बड़े ध्यान से करना है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जो प्लान के बाहर हो, जो भी योजना बनाई है उसी को लेकर चलना है। आपकी अलग योजना बनाकर आपको कुछ काम नहीं करना है। हम जा रहे हैं नवद्वीप के लिए और आप जा रहे हैं गोद्रुम द्वीप के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या हम जा रहे हैं गंगा जी को पार करके इस द्वीप में दर्शन करने के लिए, आप कहीं और दर्शन करने जा रहे हैं, आपको यहाँ और पूजा फिक्स करके रखा है, ऐसा नहीं करना है। आप हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, योजना जो बनाई है उसी को लेकर आपको चलना है। आपको शॉपिंग का समय दिया जाएगा, आपको फ्री टाइम दिया जाएगा, सब कुछ हमने व्यवस्था करके रखी है। लेकिन इसके अलावा आप इंडिपेंडेंट प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ भी आपका अलग प्लानिंग नहीं करेंगे, उस स्थिति में आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रहेगा। और यात्रा में जाते हुए कीमती वस्तुओं को लेकर मत जाना, क्योंकि जब कीमती वस्तुएं साथ में होती है तो डर रहता है कि उसको कोई चोरी कर लेगा। संकट को आप बुला रहे हैं, सुरक्षितता को ख़त्म कर रहे हैं। जितना ज़रूरी है उतना ही वस्तु लेके जाइए, जितना पैसा ज़रूरी है उतना ही लेके जाइए, और पूरा पैसा लेकर सब जगह घूमना नहीं है आपको। रूम पे उसको लॉक करके रखना है, जितना चाहिए उतना जेब में रखना है। कहीं यात्रा में आपको रास्ते में कहीं शॉपिंग नहीं करना है, ध्यान रखना। कहीं खड़े हो गए तुरंत कुछ लेने गए, कुछ ये लिया वो लिया, वो आदत, एक आदत उन लोगों को होती है, जहाँ कहीं नए जगह गए तो दुकान में खड़े हो जाते हैं, उसमें यात्रा का बहुत समय बर्बाद होता है। हमारा जो प्लानिंग है, टाइम टेबल बना के रखा है हमने कि यहाँ पर एक घंटा कथा करनी है, यहाँ जाने के लिए एक घंटा लगेगा, बस में दो घंटे लगेंगे, एक घंटा नाव में लगेगा, कथा पौने घंटे की होगी, सब बना के रखा है। जितना टाइम पास हमारी तरफ से होगा उतना लाभ हमारा कम होते जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। जहाँ शॉपिंग करना है वहाँ आपको समय देंगे हाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग में क्या खरीदना है वो भी मैंने इसमें लिख के दिया है। हाँ क्या क्या शॉपिंग करने योग्य वस्तुएं हैं वो भी आपको दिया है बता के। तो उसी ढांचे में आप रहिए तो अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के ऐसे कोई हृदय की बीमारी वगैरह है, अपनी परमानेंट दवाइयाँ साथ में लेकर चलना, क्योंकि हो सकता है मायापुर एक गांव है, बहुत कलकत्ता शहर है, ये 4 घंटा दूर है वहाँ से, 120 किलोमीटर दूर है, तो आपकी जो दवाई आप ले रहे हो शायद वहाँ नहीं मिलेंगी आपको, तो वो दवाई आपको यहाँ से स्टॉक लेके जाना है और नियमित रूप से उसको लेके चलना है। जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह है, कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जिसको समय पर भोजन न मिलने पर कष्ट होता है, अपना सूखा नाश्ता बिस्किट साथ में लेके चलना, ताकि यदाकदाचित कुछ कारण से लेट वेट हो गया तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आपका मतलब जो मन जो है वो उद्विग्न नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए आपको। इसलिए जो भी आपकी ज़रूरतें हैं अपने बैग में रखना और अपना अपना कार्य ठीक से चलना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि धाम की महिमा जो है वो धाम में होने वाली कथा में प्रकट होगी। क्या जगह का महत्व है, उसकी कथा क्या है, उसमें क्या प्रार्थना करना है, उसमें क्या दर्शन करना है, किसको क्या प्रार्थना करनी है, ये सब आपको कथा में मालूम पड़ेगा। इसलिए आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप चाहे बस में सो सकते हैं, बोट में भी सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं, लेकिन कथा में आपको सोना नहीं है। तो कथा आपकी अगर आप सोने में बिताएंगे तो आपका बस चूक गया, यू हैव मिस द बस, जिसके लिए गए थे वही आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, रात को भी रूम में अधिक टाइम पास नहीं करना है। जब आपको बोलेंगे आप जाना है, अभी विश्राम करना है, तुरंत विश्राम करना है, क्योंकि वहाँ पर सुंदर इतना भव्य मंदिर है। एक बात बताने को भूल गया मैं, मायापुर ये इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है और वहाँ पर इस्कॉन की केवल 700 एकड़ जगह है, ज़्यादा नहीं है केवल 700 एकड़ जगह है, एक पूरा शहर है वहाँ पर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, गुरुकुल है, गौशालाएँ हैं, खेती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं, 2 बड़े भव्य मंदिर हैं और एक विश्व का सबसे भव्य मंदिर वहाँ बनने जा रहा है, सबसे चौड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। विश्व का आज का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, मदुराई का, और एक है सेंट पॉल का, और एक है जर्मनी में, इटली में है। उन सबसे बड़ा मंदिर चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी के अनुसार, शास्त्र में दिए गए भविष्यवाणी के अनुसार हमारे प्रॉपर्टी में बन रहा है। इसलिए आपको विनती है कि आप सबका दर्शन ठीक तरह से कीजिए, सबका प्लानिंग हमने करके रखा है, तो पूरा आप लाभ लीजिए। और उम्मीद यह है कि आप रात में खूब सोएंगे अच्छी तरह से, सुबह जल्दी मंगल आरती में जाएंगे, मंगल आरती 4:30 को होती है, वहाँ पर जाकर अगर कोई मंगल आरती मिस करता है तो उतना दुर्भाग्य और कौन हो सकता है, क्योंकि एक बार मंगल आरती आप देखेंगे तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं उसको। इसलिए फर्स्ट डे जाकर देखिए क्या लगता है आपको, फिर आगे का प्लानिंग उसके बाद में कीजिए। हमने लिखा है प्लानिंग में मंगल आरती ऑप्शनल लिखा है, हाँ कंपल्सरी लिखा नहीं है, लेकिन हमारा ये अनुभव है हमारी यात्रा में ऑप्शनल लिखने के बाद भी सारे यात्री मंगल आरती में उपस्थित रहते हैं, भले वृंदावन में यात्रा हो या उडुपी में हो और कहीं भी हो, हमने देखा है हमारे यात्री सब मंगल आरती में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा आनंद आता है। उसके बाद में हमारा यात्रा का शेड्यूल उसके आगे चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, ये मुझे आपको बताना चाहता था मैं, और मैं कई दिन से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, आज से लेकर यात्रा के समय तक भी करता रहूँगा, कि आप लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत कृपा इस यात्रा में प्राप्त हो जाए और आपका भक्ति जीवन अच्छी तरह से वृद्धिंगत हो जाए, उसकी बढ़ोतरी हो जाए और आप लोग भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं और आपकी यात्रा बड़ी सफल रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गौरांग महाप्रभु की जय।